अगला अमल, 6 अमल अभी तक किए हैं, जरा दोहराते हैं मेरे साथ, मुझे भी पता चले कि आप किस किस चीज के साथ हैं। सबसे पहला सब बोलेंगे शुक्र, दूसरा नबी की नाफरमानी, तीसरा जिन गुनाहों पे दुनिया में वईद की बात है उससे हटना, चौथा क्या पड़ा है इस्तिग़फार, पांचवा क्या पड़ा है आम दिनों में नेकियां करना ताकि मुश्किल में परेशानियों से बचे, छठा क्या पड़ा है तंगी में नेकी करना ताकि आसूदगी में आसानी हो। अब हम सातवां अमल देखेंगे, मसाइब से बचाने वाले अस्कार का इख्तिमाम। ये टॉपिक आपका बुक के 162 पेज से लेकर 178 तक, इसके अंदर आलमोस्ट वो दुआएं मौजूद हैं, चूँकि बिखरी हुई हैं लेकिन आपकी उस बुक में ये हैं। ये सारे अस्कार का इख्तिमाम करें, इसको आप बाद में पढ़ के देखिएगा इंशाल्लाह, एक एक दुआ प्यारी है और इसको याद कर ले। हर वक्त किताबें हाथ में नहीं होती, जहन में जब चीज़ होती है याद तभी आती है, और मैंने देखा जब घबराहट तारी होती है ना तो सामने लिखा नहीं नज़र आता, उस वक्त बस आप अपने दिल और दिमाग से बोलते हैं। तो फिर सातवां पॉइंट हमारा क्या हुआ, मुसीबतों से बचने का, या मुसीबतों के वक्त के आने से पहले करने के कामों का अस्कार, और इसको कीमती जाने। आपको पता है कि इसमें आपने एक दुआ सीखी होगी, या नहीं सीखी तो अभी नहीं सीखी तो आगे आ जाएगी, कि बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शयुन फिल अर्दी वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम, पहली दुआ ये इस बुक में, 3 दफ़ा फजर और 3 दफ़ा मगरिब के बाद पढ़ लें। फरमाया हर चीज़ के शर से अल्लाह आपको बचा लेगा। अब मुझे बताइए, आप सीट बेल्ट बांधते हैं, गवर्नमेंट कहती है सीट बेल्ट बांध लें, हादसे की सूरत में आपको नुकसान नहीं होगा, जहाज़ में जाएं तो सीट बेल्ट बांध लेंगे तो अगर जहाज़ हिले जुलेगा तो आपको कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट है ना हमारा। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि लोगों ये दुआ पढ़ लो, तुम्हें कोई चीज़ नुकसान नहीं देगी। आपको तो एक सहाबी को एक जंग में आजमाने के लिए, उनके ईमान को चैलेंज करने के लिए जहर का प्याला पेश कर दिया कि तुम बड़े कहते हो कि हमारा अल्लाह हमारी बात मानता है, ये जहर पियो। कहा अच्छा, मेरा ईमान चेक करते हो, मेरा ईमान है कि अल्लाह जहर को भी तरियाक बना सकता है। 3 दफ़ा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शयुन फिल अर्दी वला फिस समाई, नम कहा और पी लिया, कुछ भी नहीं हुआ, नहीं मरे। अब आप ना पीजिएगा, हमारा ईमान वो नहीं है। याद रखिए, असल सौदा ईमान का है, कीमत ईमान की है, हमारा वजन, हमारी वैल्यू, हमारा मुकाम हमारे ईमान के साथ चलता है। ये ईमान ही फिर अमल सवाले कराता है, ये जो हमारे अमल सवाले टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ना, वो ईमान का झोल है। पीछे से उसका नट बोल्ट ठीक कर दीजिए, अगले काम खुद ही ठीक होंगे। तो ये सारा टॉपिक आपने इंशाल्लाह ये जो पेजेस हैं इसको देखना है बाद में, और एक एक दुआ को याद करना है इंशाल्लाह। मैं इसको किसी मौके पर अलग से पूरा भी पढ़ा दूंगी, इस बुक के साथ भी अल्लाह ने चाहा। तो 8वां पॉइंट फिर क्या बना, दुआ करें। जो चीज़ अपनी कोशिशों से नहीं ले सकते वो दुआओं से मांग ले। मुझे तो दुआ ऐसे ही लगती है कि अल्लाह मैंने पूरी कोशिश की, मेरे से तो ये काम नहीं हुआ, तू कर दे। मसा आप देखिए कि जैसे ये रैक रखा हुआ है ना ऊपर, इसमें बुक्स रखी है, कुरान है। अब एक छोटा सा बच्चा आए, यहाँ से कुर्सी रखे, फिर उसके ऊपर कुशन रखे, फिर ऊपर चढ़े, कोशिश पूरी करे कि मैं इधर से बुक उतार लूँ। आप बैठी देख रही हैं, देखती हूँ करता क्या। अब वो इधर जा रहा है, अब उसका हाथ वहाँ तक चला गया, ऊपर नहीं जाता। जब वो पूरी कोशिश कर ले, नहीं उतरे तो कहते मामा मुझे ये बुक उतार दे। ये है दुआ, इधर मामा है उधर अल्लाह है। ए अल्लाह, मैं अपनी कोशिशों से वो नहीं ले पा रही, तो अपनी रहमतों से मुझे दे दे। दुआ यही है, फकीरी है, आजजी है, अल्लाह के आगे अपने आप को छोटा करना है। तो वो मुसीबतें जो हम पे आने वाली होती हैं उनसे बचने का पहले से ही दुआओं के जरिए से एहतमाम करें। इसमें से भी कुछ दुआएं आपको उस बुक में मिलेंगी इंशाल्लाह, इसमें मोर लाइक देखे दुआएं ही हैं। चंद रिवायात इसके बारे में देख लीजिए, आयतें कुरान की आपके सामने लिखी हुई हैं, सूरह फुरकान आयत 88 है, कुल मा याबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम। फरमाया कह दीजिए, अगर तुम्हारा दुआ करना ना होता तो मेरे रब को तुम्हारी कोई परवाह नहीं थी। क्या पता चला, तुम दुआ नहीं करोगे ना तो अल्लाह तुम्हारी नहीं सुनेगा। आम लोगों से मांगे तो वो नाराज़ होते हैं, ऐसे ही है ना, पहली दफ़ा खुशी खुशी आपकी बात पूरी कर देंगे, दूसरी दफ़ा भी करेंगे, तीसरी दफा के बाद तुम कहेंगे कि ये इनकी आदत नहीं बनती जा रही, सुन रहे, बस यही बात है। दुनिया वालों से मांगे तो नाराज होते हैं, अल्लाह से ना मांगे तो नाराज होते हैं। और मेरे गुनाहगार कानों ने लोगों से, लोगों के जुमले सुने हैं, हम नहीं मांगते दुआ, हमने नहीं कभी किसी से कुछ मांगा। अंदर अपनी बड़ाई का इतना एहसास है, जिसको अब वो कहना चाहिए कि अल्लाह ने दिया ही बड़ा, वो कहते हैं हमें किसी की जरूरत ही नहीं। रौनक से औरतें कहती हैं मुझे किसी से नहीं काम लेना, मुझे नहीं खिदमत करानी, मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ, मैं खुद कर लूंगी। और बाद दफा जब मिजाज बिगड़ता है ना, तो बाज खवातीन बुढ़ापे में ये बातें अपनी बहू बेटियों से कह रही होती हैं, चलो जाओ चले जाओ, मैंने नहीं कराना, अल्लाह मुझे किसी के हाथ का पानी ना पिलाए। कभी सुनिए ये बात, अगर कभी आपने ये जुमला कहा है तो माफी मांग लें, अपने बच्चों से पानी मांगा करें, नेकियां दिलाएं। ये जो हम कहते हैं ना कि नहीं अल्लाह मुझे अपने बच्चों का मोहताज ना करे, एक लिहाज से ठीक है कि अल्लाह मुझे बेबस ना कर दे, लेकिन अपने बच्चों से पानी लें, उनसे पांव दबवाएं, उनसे खिदमत कराएं, क्योंकि हम सब मजबूर हैं। और रह गई बात अल्लाह की, सूरत वातिर में अल्लाह ताला कहता है या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाहि वल्लाहु हुवल गनीउल हमीद, ए लोगो तुम सब अल्लाह के आगे फकीर हो और वो गनी भी और बादशाह भी है, तो लिहाजा दुआ जरूर मांगे। अब देखिए कि दुआ मांगना अपनी बेबसी को भी तो जाहिर करना है ना, तो ये दुआ मांग के आप सीधी सीधी मांगे, आपको नहीं कोई दुआ याद, कोई बुक पास नहीं है, अल्लाह सुभान तआला हर जुबान सुनते हैं, हर जुबान उनको समझ आती है। आप उर्दू में मांगे, पंजाबी में मांगे, जिस जुबान में भी मांगेंगे अल्लाह सुभान ताला आपकी दुआओं को जरूर सुनते हैं। ठीक है, नबी सल्लम के अल्फाज में जो तासीर है वो हमारे अल्फाज में नहीं है, जो कुरान की दुआओं की खूबी है वो हमारी आपकी बातों की नहीं है। तो याद कीजिए, दुआएं भी मांगिए, लेकिन जब आप किसी जगह बंधे हुए हैं, फंसे हुए, अब आप कहते हैं चूंकि दुआ आती नहीं है, आप करा दें दुआ। अच्छा, बाज़ लोग क्या कहते हैं, मुश्किल में पड़े किसी को बुलाओ दुआ कराएं। जो आपके दिल से दुआ निकलेगी ना, वो दूसरा नहीं मांग सकता। तड़प आपके दिल में होनी चाहिए। मुझे एक ऐसा बच्चा याद आ जाता है, बच्चे से मेरा यंग था, हाफिज था हमारी कम्युनिटी का, जहाँ भी थे, तो उनके शबाब जो थे वो शहर के काफ़ी मोतबर शख्सियत थे, दरस व तदरीस से भी मुतल्लिका थे। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो शहर के बड़े बड़े आलिम उनके जनाजे में आए, लेकिन जो 20-22 साल का बेटा था आगे आ गया, कहने लगा मैं अपने बाप का जनाजा पढ़ाऊंगा। होंगे बड़े बड़े आलिम, बच्चा पढ़ाएंगे, बट मैं पढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा इससे अच्छी क्या बात है। फिर वो जो जवान बच्चे ने अपने बाप का जनाजा पढ़ाया और माइक पे आ रहा था, हम घरों से सुन रहे थे, और जब उसने फिर रब्बे रहम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा पढ़ा, उसकी चीखों से पूरी कॉलोनी जो थी ना वो रो रहे थे लोग। जो बेटे के मुँह से दुआ निकल सकती है वो कोई आलम दीन के दिल से तो नहीं निकल सकती। जितनी चोट लगती है उतनी तकलीफ है, तो खुद दुआ मांगे। देखिए हम सब अपने बच्चों को इस काबिल तो कर दें, मैं अक्सर जुमला बोल देती हूँ कि बेटों को इस काबिल कर दीजिए कि वो आपका जनाजा पढ़ाएं, और बेटियों को इस काबिल कर दीजिए कि वो आपको गुसल दें। आज से ये काम करिए। देखिए माँ का कोई पर्दा खुल जाए तो बेटी किसी को नहीं बताएगी। हमारी बेटियाँ हमें गुसल दे सकती हैं, हमने उनको हर चीज़ सिखा दी, फेशियल तक करने सिखा दिए, पेडीक्योर मैनीक्योर, गुसले मैयत भी सिखा दीजिए। ये तो फिर वो थी औलादें जो आंखों की ठंडक थी, आज तो सौदेबाजी चल रही है, हम उनके साथ जितने नाइस वो हमसे उतने नाइस। तो बहरहाल ये है कि ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो दुआ मांगे, सीधी मांगे, नहीं आती तो उर्दू में जिस लफ्ज़ में मांगे। मत सोचिए कि अल्लाह एक आलम दीन की दुआ ज़्यादा सुनता है और एक दुखी माँ की नहीं सुनता। टूटे फूटे लफ्ज़ों में अगर माँ ने बददुआ दे दी ना, वल्लाह ही ये लग जाएगी। तो ये लफ्ज़ तो मेरे आपके लिए होते हैं, अल्लाह ताला के लिए लफ्ज़ों की कोई अहमियत नहीं है हमारे। ठीक है अगर मसनून दुआएं होंगी उसका असर ज़्यादा होगा, लेकिन उनको पढ़ते वक्त भी साथ अपनी फीलिंग्स रखें। आप कहते हैं ना कुरानी दुआएं, हमारे एक बुक भी है शायद फैनी करीब, पूरे कुरान की दुआएं उसमें। यकीन करें मुझे तो कोई एक दुआ ऐसी नहीं लगती कि जो मेरे हालात के मुताबिक ना हो। पढ़ें दुआ के लफ्ज़ कुरान के और अपनी नियत कर लें। बस आप देखिए जैसे रब्बिर हम हो माँ कमा रब्बा यानी सगीरा, मुझे अपने लिए तो ये बहुत अच्छा लगता है, कोई किसी तरह भी कर ले। मुझे अपने लिए दुआ मांगनी है ना, मुझे अपने लिए कुछ मांगना है, मैं सोचती हूँ अगर ये चीज मुझे मिली तो मेरे माँ को, मेरे बाप को, मेरे घर वालों को खुशी होगी ना, तो मैं क्या कहती हूँ, रब्बे रहम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, क्या कि अल्लाह मेरे माँ बाप को मेरी ये खुशी दे दे, मैं अपने आप को किसी तकलीफ से बचाऊंगी, तो अगर मेरी वो बीमारी या तकलीफ टल गई तो मेरे माँ बाप को खुशी होगी ना, तो मैं कहती हूँ रब्बे रहम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा कि अल्लाह मेरी ये तकलीफ टाल दे ताकि मेरे माँ बाप मेरे सदमे से बच जाए। असल फीलिंग्स हैं। लोग दिन रात बच्चों की और शोहरों की बातें पूछते हैं, मसाइल बहुत सारे हैं आज के दौर में। मैं सबको कहती हूँ कि रब्बना हबलना मिन अज़्वाजिना वज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजालना लिलमुत्तकीना इमामा। अल्लाह से यकीन से मांगिए, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको अता करेगा। तो फिर क्या बात पता चली, दुआ मांगनी है। फिर नवी चीज पेज 190 पे है, नंबर 9 क्या है, आसूदगी में कसरत से दुआ करना। हम कहते हैं पानी सर से गुजर जाए फिर दुआएं मांगो, और मैं अक्सर औरतों को जब उनके आंखों से आंसू गिरते, जवान बच्चों की बेहिदायती या गुमराही पे रोते देखती हूँ, और फिर वो कहती हैं कोई दुआ करें, कुछ बताएं, कोई वजीफा कर लो, बेटे ऐसा हो गया, बेटी ऐसी हो गई। तो मैं सोचती हूँ कि आपने क्यों इंतजार किया कि आपकी बेटी बिगड़े फिर आप आए, आपका बेटा आपके हाथों से ही चला जाए फिर दुआएं मांगे। आज दुआ मांगिए, देखिए आपके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अभी से दुआ करें कि अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत पे रखना। तो मुसीबत आ जाए फिर दुआ मांगना नहीं, सेहत में मांगिए। मुसीबत नहीं आई भी, आने वाले वक्त से पहले दुआ मांगिए कि अल्लाह हम पे आसूदगी हो। मसलन मैं अक्सर सोचती हूँ कि जैसे ये दुआ है ना, बच्चियाँ पूछती भी हैं कि अनमेरिड बच्चियाँ ये दुआ क्यों मांगे, रब्बना हबलना मिन अज़्वाजिना। तो मैंने कहती हूँ कि देखें अनमेरिड है ना, अभी बच्चे नहीं है, शौहर नहीं है, कभी तो होगा ना, हम जन्नत भी तो मांगते हैं ना, हालांकि अभी हम जिंदा, तो जन्नत अभी नहीं आई लेकिन हम मांग रहे हैं, तो शादी नहीं हुई आप अभी मांगे, बल्कि आपकी ये दुआ आपसे अच्छा शौहर चूज करवाएगी, आपके माँ बाप आपके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढेंगे, और शादी हो गई है बच्चे नहीं है मांगिए, आपकी ये दुआ आपको नेक सालेहीन अता करेगी। तो हमेशा वक्त से पहले दुआ मांगे। और फिर उसके बाद 10वीं चीज जो है वो क्या है, सदका। ये बात तो हकीकत में आजमाई भी है कि सदका मुसीबतों को टालता है। हमारे कल्चर में क्या मारूफ है, काला बकरा, अंडे, मसूर की दाल, और ऑयल में रोटी पका के चिड़ियों को डालना, यही सोचते हैं ना हम लोग। देखिए ऐसी कोई चीज नहीं है, सदका सिद्क से है, सच्चे दिल से जो चीज अल्लाह के रास्ते में देंगे वो सदका होगा, माल का सदका, इज्जत का सदका, माफ कर दें किसी को आपकी इज्जत का सदका, किसी ने आपकी बेइज्जती की आप उसकी बेइज्जती ना करें ये भी सदका है, किसी ने आपकी गीबत की, किसी ने आपको लेट डाउन किया बुरा का, आप उसकी तारीफ करें। तो सदके की बहुत सारी किस्में हैं, और यकीन करें कि सदका बंदे के लिए अल्लाह की रहमत को किस तरह से लेकर आता है, एक हदीस पढ़ लीजिए। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लम ने फरमाया, पेज 194 है बुक का, काब बिन उजरा एक सहाबी थे, आपने फरमाया कि काब बिन उजरा, नमाज अल्लाह तला की कुर्बत का जरिया है, रोजा दोजख की आग के मुकाबले में ढाल है, और सदका गुनाह को इस तरह खत्म कर देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। सोचिए आग लगी है तो पानी डाला तो बुझ गई ना, अब अल्लाह को हम पे गुस्सा आ रहा है और आपने ऊपर से सदका दिया तो माफ हो गया, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है। फिर इसी तरह तबरानी से रिवायत है माविया बिन हैदा की, आपने फरमाया कि बिला शुबा मख्फी सदका, मख्फी किसको कहते हैं, जो खुफिया तौर पे किया जाए, जिसको छुपाया जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के गजब की आग को बुझा देता है। फिर एक तवील रिवायत है बड़ी खूबसूरत, फरमाया कि बिला शुबा अल्लाह ताला ने हजरत यहया बिन जकरिया को 5 बातों के बारे में हुक्म दिया कि वो खुद इन पर अमल करें और बनी इसराइल को इन पर अमल करने का हुक्म दें। तो उन्होंने लोगों को बैतुल मुकद्दस में जमा किया, मस्जिद भर गई, तो वो बाला खानों में बैठे, उन्होंने लोगों से फरमाया बिला शुबा मुझे अल्लाह ताला ने 5 बातों के बारे में हुक्म दिए, मैं इन पर खुद अमल करूं और तुम्हें इन पर अमल करने का हुक्म दूं। फिर इसी में उन्होंने उन चीज़ों का तذکرہ किया और कहा कि वो सदका करने का हुक्म है। तो सारी बात का खुलासा क्या है, देखिए सदका खुशी से करेंगे ना तो अल्लाह ताला उसको वापस भी पलटा देता है। आप किसी को कुछ दें क्या वो लौटाता नहीं है, तहा दू तहा बू, तोहफा दो तो तोहफा लो भी। वन साइडेड तोहफे जो होते हैं ना, वो तोहफा नहीं होता, या तो वो रिश्वत होती है या वो कोई और ही उसके अंदर मोटिव होता है। अब जब इंसान एक को बदले में दूसरे को देता है, तो क्या अल्लाह ताला नहीं देगा? मा नकसत सदकतु मिम मालिन, आपने कसम खाकर तीन बातों में से एक बात ये फरमाई थी कि सदका देने से माल कम नहीं होता, और कम से कम जो अल्लाह ताला लौटाते हैं ना, वो 7 गुना, कहीं 10 गुना, कहीं 70 गुना, हालात और मौके और मुनासबत के हिसाब से सदका होता है। तो लिहाजा कभी भी आपको अल्लाह ना करे कोई मुश्किल, कोई तकलीफ, कुछ आए ना, तो क्या करें? सदका दे, जो है दे दे, जिस वक्त जिन हालात में बैठे हैं। अब ये नहीं कि अच्छा अब कोई इसका प्रोटोकॉल करते हैं, कोई देख चावलों की पकाते हैं, कोई बकरा कटवाते हैं, नहीं, वो एक अलग बातें हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत सदका आपको बता गया। इसमें एक हदीस है जिसका खुलासा है, जो मैं यहाँ बयान नहीं करती, लेकिन आपने हदीस सुनी होगी कि नबी सल्लम रमज़ान में बहुत सखी हो जाते थे, अजवदुन नास, जवाद कहते हैं, बहुत सखी, जनरस, दिल खोल के माल देने वाला। तो इमाम बुखारी कहते हैं अल्लाह के नबी का ये सदका कुरान का सदका होता था, यानी लोगों को कुरान सिखाने लग जाते थे। तो लोगों को तालीम देना, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, तबलीग करना, बुराइयों से रोकना, ये सदका है। मुश्किल में पड़े हैं ना, छुट्टी ना करें, जाके पढ़ाना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें, छुट्टी करेंगे, घर बैठेंगे, रोएंगे, बाज़ लोगों की मौतें हो जाती हैं छुट्टी करके बैठते हैं। मैं कहती हूँ अगर ये इस वक्त आके कुरान की क्लास में बैठे होते, जो आज इनको कुरान का मज़ा आना था, ये आमतौर पर नहीं आता। जिंदगी के छोटे छोटे उजर बहानों के वक्त में कुरान खोलें, आप देखिएगा ये भी सदका होगा। और इंशाल्लाह जितने सच्चे दिल से आप ये सब कुछ करेंगे, अल्लाह ताला आपको उतना ही अता करेगा। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुसीबतों के आने से पहले की 10 बातें पूरी हुई। मेरा दिल कर रहा है कि हम सारे एक बार दोहरा लें। बोलिए, पहली शुक्र, दूसरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से इज्तनाब, नंबर 3 वो काम जो दुनिया में मसाइब को लाते हैं उनसे बचना। उसमें हमने कितने काम पढ़े थे? 28 चीज़ें पढ़ी थी, 28 different sins। नंबर 4 इस्तग़फार करना। नंबर 5 नेकी के मौके को कबूल करना। 6 तंगियों में नेकियां करना। नंबर 7 अस्कार, यानी मुसीबतों से बचने वाले अस्कार का एहतमाम करना। जी नेक्स्ट दुआ मांगना, और नेक्स्ट आसूदगी में दुआ करना कि हम पे मुसीबत आए ना, और नेक्स्ट सदका। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए कि हमने 10 इलाज कर लिए। अगर अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में ये रख दिए, तो उसके बाद क्या होगा? हम पे तकलीफ आएगी नहीं। सारी कोशिश कर ले, उसके बाद भी तकलीफ आ सकती है, याद रखिए, लेकिन आपने मैंने अपने लिए एहतमाम किया।